एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। मैं तुम्हें यतीम न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास रहूंगा।
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम आज का परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उनसे प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों के पास आते हैं, हम तेरे वचनों को सुनने जा रहे हैं पिता। हमारे मनों को खोल दे, विशेषकर मेरे श्रोताओं के संग हो पिता, तेरा पवित्र आत्मा उन्हें दे और तेरा वचन के द्वारा बहुतायत से उन्हें आशीष दे। मेरे संग हो पिता, तेरा पवित्र आत्मा के द्वारा चला ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे सामर्थ के द्वारा बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुना ग्रहण कर, आमीन। प्यारों, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है मसीह की वापसी की निश्चितता। आज हम लोग मसीह का दूसरा आगमन के विषय में सीखेंगे। मसीह का दूसरा आगमन कलीसिया की धन्य आशा है, जो सुसमाचार की एक भव्य पराकाष्ठा है। उद्धारकर्ता का आगमन शाब्दिक, व्यक्तिगत, दृश्यमान और विश्वव्यापी होगा। जब वह आएगा, धर्मी मृतक जिलाए जाएंगे एवं जीवित धर्मियों के साथ गौरवान्वित होकर स्वर्ग पर उठा लिए जाएंगे, परंतु अधर्मी मर जाएंगे। भविष्यवाणी की अधिकतम पंक्तियों की लगभग पूर्ण पूर्ति संसार की वर्तमान परिस्थिति के साथ यह संकेत देती है कि मसीह का आगमन निकट है। उस घटना के समय को प्रकट नहीं किया गया है और इसलिए हमें सदैव तैयार रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। एक छोटे बेटे ने सोते समय अपनी माँ से कहा, माँ, मैं अपने मित्र यीशु के लिए बहुत उदास हूँ, कब वह आएगा? उस बच्चे को शायद ही पता हो कि उसके नन्हे से दिल की तमन्ना युगों युगों की लालसा रही है। बाइबल के अंतिम शब्द शीघ्र ही वापसी का वादा करते हैं। हाँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। यीशु के निष्ठावान साथी यहूना भविष्यवक्ता ने जोड़ते हुए कहा, आमीन, हे प्रभु यीशु आ। प्रकाशित वाक्य 22:20। यीशु को देखने के लिए, उसके साथ हमेशा के लिए एक होने के लिए, जो हमें कल्पना से भी अधिक प्रेम करता है, सभी संसारिक कष्टों का अंत करने के लिए, पुनरुत्थित प्रियजनों के साथ जो अभी सोए हैं, अनंत काल का आनंद लेने के लिए। कोई आश्चर्य नहीं कि मसीह के स्वर्गारोहण के बाद से उसके मित्र उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक दिन वह आएगा, यद्यपि धर्मी लोगों के लिए भी उसका आना एक अचंभित करने वाला आश्चर्य होगा, क्योंकि अपनी लंबी प्रतीक्षा में सब ऊँगते और सोते हैं, जैसा कि हम पाते हैं मती की पुस्तक उसका 25:5 में। आधी रात में पृथ्वी की सबसे काली घड़ी में परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाने के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगा। पवित्र शास्त्र उन घटनाओं का वर्णन करता है। मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ, हो चुका, यह आवाज धरती को हिला देती है, जिससे एक ऐसा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी ना आया था। प्रकाशित वाक्य 16:17-18। पहाड़ हिलते हैं, चट्टानें हर जगह बिखरी हुई हैं, और पूरी पृथ्वी समुद्र की लहरों की तरह लहराने लगी। इसकी सतह टूट जाती है और जाति जाति के नगर गिर पड़े, और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता ना लगा। पद 19:20 में हम पाते हैं, आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। प्रकाशित वाक्य 6:14। भौतिक संसार पर आने वाली अराजकता के बावजूद परमेश्वर के लोग साहस करते हैं जब वे मनुष्य के पुत्र का चिन्ह देखते हैं। मत्ती 24:30। जैसे ही वह स्वर्ग के बादलों पर उतरता है, प्रत्येक आंख उस जीवन के राजकुमार को देखती है। वह इस बार दुखों के मनुष्य के रूप में नहीं, बल्कि विजेता और जीतने वाले के रूप में अपनों का दावा करने के लिए आता है। कांटों के मुकुट के स्थान पर वह महिमा का मुकुट धारण करता है, और उसके वस्त्र और जांग पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। प्रकाशित वाक्य 19:12-16। उसके आने पर गहरी निराशा उन लोगों को जकड़ लेगी जिन्होंने यीशु को प्रभु एवं उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया है और अपने जीवन पर उसकी व्यवस्था के दावों को अस्वीकार कर दिया है। उसके अनुग्रह को अस्वीकार करने वालों को उनके अपराध बोध को इससे अधिक और कुछ नहीं जागरूक कर सकता जितना कि वह आवाज जिसने बहुत धैर्यपूर्वक याचना की थी, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो। यहेजकेल 33:11 में हम यह पढ़ते हैं, तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की कुहों में और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उसके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है। प्रकाशित वाक्य 6:15-17 में हम यह पाते हैं, परंतु जिन्होंने लंबे समय से उसके आने का इंतजार किया है उन लोगों का आनंद दुष्टों की निराशा पर छा जाता है। उद्धारकर्ता का आगमन परमेश्वर के लोगों के इतिहास को गौरवशाली शिखर पर लाता है। यह उनके छुटकारे का पल है। उत्तेजित श्रद्धा के साथ वे चिल्लाते हैं, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोहते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम इसकी बाट जोहते आए हैं, हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। हम यह पढ़ते हैं यशायाह 25:9 में, जैसे जैसे यीशु निकट आता है वह अपने सोए हुए धर्मी लोगों को कब्रों से बुलाता है और अपने स्वर्गदूतों को अधिकृत करता है कि वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं में उसके चुने हुओं को इकट्ठा करें। मत्ती 24:31। संसार भर में धर्मी मृत उसकी वाणी सुनते हैं और अपनी कब्रों से उठते हैं, कितना सुखद क्षण है। फिर जीवित धर्मी बदल जाते हैं, एक ही पल में पलक झपकते ही जैसा कि हम पढ़ते हैं पहला कुरंथियों 15:52 में, महिमायुक्त व अमरत्व प्राप्त पुनर्जीवित धर्मी लोगों के साथ वे प्रभु से हवा में मिलने के लिए ऊपर उठा लिए गए ताकि सदा के लिए उसके साथ रहें, कहता है 1 थिस्सलुनीकियों 4:16-17। मसीह की वापसी की निश्चितता है। प्रेरितों एवं आरंभिक मसीहों ने मसीह की वापसी को धन्य आशा माना, जैसा कि हम पढ़ते हैं 2:13 में और इब्रानियों 9:28 में। उन्हें उम्मीद थी कि पवित्र शास्त्र की सभी भविष्यवाणियां और प्रतिज्ञाएं दूसरे आगमन पर पूरी होंगी, 2 पत्रस 3:13 और यशायाह 65:17, क्योंकि मसीही धर्म यात्रा का यही लक्ष्य है। वे सभी जो मसीह से प्रेम करते हैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब वे उसके साथ और पिता पवित्र आत्मा और स्वर्गदूतों के साथ आमने सामने की सहभागिता साझा करने में सक्षम होंगे। शास्त्र गवाही देती है दूसरे आगमन की निश्चितता शास्त्र की विश्वसनीयता में जड़ित है। अपनी मृत्यु से ठीक पहले यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि वह उनके लिए जगह तैयार करने के लिए अपने पिता के पास लौटेगा, परंतु उसने प्रतिज्ञा की, मैं फिर आऊंगा। यह प्रतिज्ञा हम पढ़ते हैं 14:3 में। जिस प्रकार मसीह के पृथ्वी पर प्रथम आगमन की भविष्यवाणी की गई थी, उसी प्रकार संपूर्ण पवित्र शास्त्र में उसके दूसरे आगमन की भी भविष्यवाणी की गई है। यहाँ तक कि जल प्रलय से पूर्व ही परमेश्वर ने हनोक से कहा था कि महिमा में मसीह के आने से ही पाप का अंत होगा। उसने भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही हैं दोषी ठहराए। हम पढ़ते हैं इसे 14:14-15 में। परमेश्वर ने हनुक को पहले ही बतला दिया था, उसने हनुक को दर्शन में दिया। मसीह से 1000 वर्ष पूर्व भजनकारी ने प्रभु के अपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए आगमन के विषय में कहा था, हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप ना रहेगा, आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। भजन संहिता 50:3-5 में हम पढ़ते हैं, उसके आने की प्रतिज्ञा में मसीह के चेलों ने आनंद मनाया। उन सभी कठिनाइयों के बीच जिनका उन्होंने सामना किया, वह आश्वासन जो यह प्रतिज्ञा लाई उसने उनके साहस व हिम्मत को नवीकृत करने में कभी असफल नहीं हुई। उनका स्वामी उन्हें अपने पिता के घर ले जाने के लिए वापस आ रहा था। वह गारंटी जिसे पहला आगमन प्रदान करता है, दूसरा आगमन के लिए यह है। दूसरा आगमन मसीह के पहले आगमन के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। यदि मसीह पहली बार नहीं आया होता और पाप व शैतान के ऊपर निर्णायक विजय प्राप्त ना की होती, 2:15, तो हमारे पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं होता कि वह अंततः इस संसार में शैतान के साम्राज्य का अंत करने और संसार को मूल पूर्णता में पुनर्स्थापित करने के लिए फिर से आएगा। लेकिन चूंकि हमारे पास इस बात का प्रमाण है कि वह एक ही बार प्रकट हुआ ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। हमारे पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह उद्धार के लिए दूसरी बार प्रकट होगा। पढ़िए इब्रानियों 9:26-28, वहां पर यह प्रतिज्ञा मिलता है। मसीह हमारे लिए स्वर्गीय सेवकाई कर रहे हैं। यूहन्ना को मसीह का प्रकाशन यह स्पष्ट करता है कि स्वर्गीय पवित्र स्थान उद्धार की योजना के केंद्र में है। प्रकाशित वाक्य 1:12-13, 3:12, 4:1-5, 5:8, 7:15, 8:3, 11:1-19, 14:15-17, 15:5-6-8 और 16:1-17। भविष्यवाणियां जो संकेत करती हैं कि उसने पापियों की ओर से अपनी अंतिम सेवकाई शुरू कर दी है, इस आश्वासन को दृढ़ करती हैं कि जल्द ही वह अपने लोगों को घर ले जाने के लिए वापस आएगा। यह विश्वास कि मसीह सक्रिय रूप से क्रूस पर पहले से ही पूरा किए गए छुटकारे को पूर्णता में लाने के लिए काम कर रहा है, उन मसीहों के लिए बहुत प्रोत्साहन लाया जो उसकी वापसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बाइबल साफ साफ बतलाती है कि यीशु मसीह अपने प्रियजनों के लिए, अपने विश्वासी लोगों के लिए फिर से आ रहा है, उन्हें अपने पास ले जाने के लिए, कि जहाँ यीशु मसीह है, जहाँ वह रहते हैं, वहाँ उनके लोग भी, विश्वासी लोग भी रहें। बाइबल बतलाती है कि यीशु मसीह पहली बार आया, यीशु मसीह का पहली बार आने का भविष्यवाणी भी बाइबल में किया गया था। बहुत से भविष्यवक्ता लोग इसका किए थे और वह समय पूरा होने पर यीशु मसीह पहली बार इस पृथ्वी पर आया, सटीक समय में आया और अपना उद्धार का काम पूरा किया, पापी लोगों के लिए, दुनिया के लोगों के लिए अपना अनुग्रह दिखाया और उनके बचाव के लिए अपना कुर्बान कर दिया, अपना बहुमूल्य जीवन निष्कलंक लहू को उनके लिए बलिदान कर दिया कि जो कोई उसमें विश्वास करे वह नाश न हो। आज वह स्वर्गीय पवित्र स्थान में हमारे लिए, दुनिया के लोगों के लिए बिचवाई का काम कर रहा है, पापियों के लिए प्रार्थना कर रहा है। यदि वे पश्चाताप करें, यीशु को अपनाएं, तो पाप से क्षमा प्राप्त करेंगे और उसका धार्मिकता प्राप्त करेंगे और उसके राज्य में अनंत काल के लिए बचाए जाएंगे। यीशु मसीह का यह प्रावधान है। आइए हम इस उपाय का उपयोग करें, यीशु मसीह को अपनाएं और उसके दूसरे आगमन का इंतजार करें। धर्मी लोगों के लिए क्या ही आनंद का समय होगा, हर्षोल्लास का समय होगा, जब वे अपने प्रिय उद्धारकर्ता, बचाने वाले के साथ मिलेंगे और अपने प्रिय जनों से भी मिलेंगे जो मर चुके हैं पर विश्वास किए थे, प्रभु में विश्वास करके मरे हैं, उनसे उनको मिलने का मौका होगा और वे यीशु मसीह अपने उद्धारकर्ता से मिल करके स्वर्गदूतों के संग स्वर्ग ले जाए जाएंगे। यह मौका है हर एक लोगों के लिए, आपके लिए और मेरे लिए। आज आइए हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लें, अपने हृदय में जगह दे कि हम उसके द्वारा उद्धार पाए और उसके राज में वास करें। परमेश्वर हमको, मुझे और आप सबको बहुतायत से आशीष देवे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों के पास आते हैं पिता, हम तेरे धन्यवाद देते हैं इस प्रतिज्ञा के लिए, इस वादा के लिए कि तू अपने लोगों को बचाने के लिए अपने बेटा प्रभु यीशु मसीह के साथ आ रहा है, अपने विश्वासी लोगों को ले जाने के लिए, धर्मी लोगों को ले जाने के लिए, हमें उस दल में होने के लिए तू मदद कर पिता। हमारे मन में तू आ, तेरा पवित्र आत्मा दे मेरे हरेक श्रोताओं को, तो को तू बहुताय से तेरा आत्मा के द्वारा आशीषित कर पिता, तेरे वचन के द्वारा आशीष दे और सबों को यीशु के नाम से
तो भी उसने हमारी मशक्क़तें उठा लीं और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا۔ ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔
گناہ کی راہ پر پھر سے کبھی جایا نہ کرو، گناہ کی راہ پر پھر سے کبھی جایا نہ کرو، اندھیروں پر کبھی بھی تم یقین لایا نہ کرو، گناہ کی
साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, Post Box 1446, Pune 411037, Maharashtra, Bharat।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindisamc@sudadven.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।